संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में महान दिन बिचरे हमारे। हमने 95 और 96वीं गाथा, 195 और 196वीं गाथा की चर्चा अपने कल विस्तार से की थी कि ज्ञानी को बंध नहीं होता है, वो ज्ञान और वैराग्य के बल से नहीं होता। कलश में भी और मूल गाथाओं में भी, मूल गाथाओं में दो उदाहरण दिए थे, एक जानकार वैद्य का, भले ही वो विष खाता हुआ वैद्य भी मरण को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार जानते हुए भी ज्ञानी उसको भोग है तो वो बंध को प्राप्त नहीं होता, और दूसरा वैरागी का, कि जिस तरह वैद्य अरुचि भाव से, जिस तरह शराब पीने वाला अरुचि भाव से शराब को पीता है औषधि के रूप में, तो उसे वैसा नशा नहीं चढ़ता जैसा उसकी रुचि पूर्वक नशा चढ़ाने के लिए ही बोलने वाले में चढ़ता है। उसी प्रकार ज्ञानी के भौगोलिक प्रवृत्ति देखी जाती है, लेकिन अंदर में जो वैराग्य परिणति है उसके बल से उसे भी बंध नहीं होता। इतनी बात मूल गाथाओं में और कलश में और टीका में, सब में ये बात बहुत स्पष्ट कर दी है। अब उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं अलग तरीके से, पेज नंबर 310 समय सार और 158 158, इसमें दोनों में निकालो आप। एक कलश है, पढ़े से शांति से, ना सुनते विषय सेव ने पियत सुन, बंधे न ज्ञानी कर्म, विषय को सेवन करते हुए भी ज्ञानी बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। और यह बात ज्ञान और वैराग्य के बल से ये कार्य होता है, इसलिए उसको सेवक सेवन करते हुए भी असेवक कहा जाता है। अब कितना थोड़े आगे बढ़ गए, क्या आगे बढ़े, वहां तो सेवक कह रहे थे और फिर भी बंध नहीं है, अब वो कहते सेवक क्यों कह रहे हो, उसका नाम उसकी श्रद्धा से रखो ना, उसकी क्रिया से क्यों रखते हो, समझिए। वो विषय कसाय का सेवन करने वाला है, सेवन सेवन की क्रिया दिखाई देने पर भी, एक पॉइंट, और तत्संबंधी अशुभ राग के विद्यमान होने पर भी, शुभ अशुभ दोनों लो। इतना ध्यान रखो, ये अध्यात्म का प्रकरण है, तो यहां विषय सेवन का मतलब जो अकेला की ये क्रिया विशेष से ही मतलब नहीं है, पांच इंद्रियों के विषयों के सेवन से है और उनके त्याग रूप विकल्प उससे भी है, वो भी सब सेवन में ही है। मैं इसका सेवन करता हूं और मैं इसका सेवन नहीं करता हूं, जो तेरे हाथ में ही नहीं है उसका तुम काय का करता और काय का करता है ना। इसलिए कहते हैं कि सेवन की क्रिया का कर्ता और अकर्ता कुछ भी माने, और सेवन की क्रिया चाहे हो और चाहे ना हो, ये दिक्कत इसलिए आ रही है बार बार क्योंकि हमने उस सेवन की क्रिया में और सेवन नहीं करने की क्रिया में बहुत बड़ा अंतर डाल रखा है, जबकि उसकी भूमिका एक ही है। भूमिका एक ही है माने एक आदमी मिथ्या तुर्कमेनिस्तान में है, अब वो 24 घंटा थोड़ी खाना खाता रहेगा, 24 घंटा विषय सेवन थोड़ी कर रहा है, 24 घंटा गंध थोड़ी सूंघता रहेगा। उपयोग तो कई जगह बढ़ता है ना, धंधे में, पानी में, व्यापार में, हैं? और प्रभु मंदिर बनवाएगा, घर घर बनवाएगा, मंदिर बनवाएगा, ऐसा समझे ना, तो विकल्पों में ही तो उलझेगा ना। अब जरा गंभीरता से विचार करें, क्या फर्क है इसमें वास्तव में विचार करें तो, चाहे आप घर का मकान बनाओ और चाहे मंदिर का मकान बनाओ, जो आरंभ है, परिग्रह है, वो तो वैसे ही का वैसा होना है ना। वो तो कारीगरों को वैसे ही बुलाना है, उनके साथ गवर्नमेंट से नक्शे पास कराना है तो वो ही कराना है, बिना मालूम घुस दिए नहीं होंगे तो नहीं होंगे, वो देना, मतलब जो भी आपको करना है, क्या फर्क है? जमीन खोदना है, नींव खोदना है, वो पांचों पापों में से मंदिर के बनवाने में आप कौन से पाप से बच जाते हैं? क्या बोलो, मंदिर सब मंदिर के साथ पाप, पाप पुण्य मंदिर को बनेगा, अपन तो बस पुण्य कमा ले जाएंगे। यदि पाप पुण्य मंदिर को बनेगा, बनेगा मंदिर, तो वो पुण्य भी मंदिर में ही जाएगा, तुझे कैसे मिल जाएगा? तुम एकदम स्पष्ट हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह की क्रिया कर रहा है, ख्याल में आई ना। और फिर कहता है मुझे नहीं लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखो अपना टोडा मन स्मारक है, इसके ही देखो, अब जो भी समझ लो उसमें जो आकुलता होती है वो तो बराबर ही होती है ना। घर के मकान बनाने में शायद थोड़ी कम होती होगी, क्योंकि वहां जो भी हुआ है उसके कर्ता भोक्ता स्वयं को ही मानता है ना, तो किसी को जवाब तो नहीं देना है, इसमें तो जवाब भी देना है। काम करना है तो जैसे होगा वैसे कराना पड़ेगा, जो खर्चा होगा वो करना पड़ेगा, और फिर भी तुम कर करके मर जाओ और ऐसे मूर्ख इस जगत में मिलेंगे कि इतना हो गया होगा, इतना खर्चा हो गया होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ा हुआ है, बोलो क्या करें? एक से उसने तो एक सेकंड में कह दिया है? अब घर के में होता तो कम से कम इसका सामना तो नहीं करना पड़ता, कोई हिसाब मांगने तो नहीं आता ना, देखता तो नहीं। देखो बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूं, ये टीवी पे भी जाएगा, कोई यदि आदमी ऐसा काम करता है, कभी तो हमने संस्था के लिए किया, तो वो काम संस्था का होगा और पाप तुझे बनेगा, ऐसा मत समझना कि उससे पुण्य बन जाएगा और तू पाप पाप से बच जाएगा। अब ये तो अपने स्मारक में तो कुछ नहीं है, खास बात नहीं है ज्यादा, लेकिन अब देख हमने शिखर में बन रहा है। अब वहां तो यहां से भी जंगल है, नक्सलवादियों का एरिया है, नीचे से ऊपर तक क्या क्या जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो सब करना पड़ रहा है, तो वो सब तुम्हारे किसी खाते में दूसरे में चला जाएगा। यदि कदाचित उसमें कानूनी कार्रवाई हुई तो कौन वो मंदिर जाएगा जेल के, तुम जाओगे जेल। माने मैं किसी के लिए विशेष बात नहीं कहना चाहता, अपन दिमाग दौड़ा सब जगह मेरे कहने का अर्थ है, तो अपन किस चीज में ये छूट चाहते हैं, किस बात की छूट चाहते हैं? वो सब शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा, अरे शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन जो उनके लिए लिखा है कि जिनने तुमने घर के 10 मकान बनाए तो एक मंदिर भी बनाओ, लेकिन तुमने घर की एक ईंट तो लगाई नहीं है, घर तो बनाया ही नहीं ना। और यहां तक कुछ लोग तो घर के गृह त्यागी हो गए, उन्होंने तो हमने घर छोड़ दिया, घर में रहते ही नहीं है, तन पे वस्त्र भी नहीं है, मतलब समझ लो, मैंने अपन से पकड़ो ना और वहां तक पकड़ो, क्योंकि एक की बात नहीं है, बीच में जितने स्टेप हों आगे आगे बढ़ने वाले, तो वो तो उनके लिए था ना कि जो खुद बनाए, जो खुद के मुकदमा लड़े हैं 10 रोजाना अदालत में खड़े रहे, वो एक मंदिर का भी लड़ दे, लेकिन खुद का तो कभी लड़ा ही नहीं, देखी नहीं अदालत, मंदिर के लिए अदालत में खड़ा है, ये कहां का कौन सा सौभाग्य है, सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? मतलब ये है, वो तो ये कहते हैं सेवक और असेवक इस सारे प्रकरण में जो भोगना भोगना शब्द आता है ना, अब मैं कितनी दफे आपको ये कहूं कि इसमें अकेला स्पर्शन इंद्रिय की क्रिया विशेष को नहीं लेना, बल्कि पांचों ही पाप लेना और पांचों के पाप के त्याग रूप जो शुभ भाव है वो शुभ की है वो भी लेना, वो क्रियात्मक ही हो गया ना। वो तो कहते क्रियात्मक नहीं, नेगेटिव भी हो तो वो भी लेना। कुछ लोग करने में लगे हैं, कुछ लोग नहीं करने में लगे हैं। मैंने एक वाक्य लिखा ना, मैंने कई जगह सुना है आपको सभा में, धर्म के दर्शन किताब में आकिंचन नाम का जो धर्म है उसमें लिखा है कि कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर परिग्रह को छोड़ दिया है, कुछ लोगों ने, कुछ लोग परिग्रह को जोड़ने में लग रहे हैं और कुछ लोग धर्म के नाम पर परिग्रह के छोड़ने के विकल्प में उलझे हैं। लेकिन ये कोई नहीं विचार करता कि ये परद्रव्य को ग्रहण त्याग किया जा सकता क्या, ये छोड़ा जा सकता क्या नहीं, इसे ग्रहण किया जा सकता क्या नहीं, उसके बारे में तो किसी को सोचना ही नहीं है। सबसे पहले उदयपुर विश्वविद्यालय में 75 विद्वान थे, जिसमें A.N. उपाध्याय, अगरचंद नाहटा, बहुत पुराने पुराने विद्वान सब मौजूद थे। वहां सबसे पहले मैंने सेमिनार में अहिंसा का लेख पढ़ा था और राजागिरी में पढ़ा था अनेकांत का, जैसे भगवान महावीर के निर्माण वर्ष की बात है, 74 की। तो सब ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के देखते थे। मैंने वहां कहा सेमिनार में कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीवों की रक्षा करनी चाहिए, ये तो सब कह रहे हैं और हम अहिंसक हैं, हमारा जैन धर्म अहिंसावादी है, सब बता रहे, लेकिन कोई किसी को मार जला सकता है कि नहीं, इस पर कोई विचार ही नहीं करता। क्यों, क्या है? तो इस तरह से नीचे से ऊपर से देखते थे कि ये टोपी धोती कुर्ता टोपी वाला क्या कह रहा है। और जब मैं पूरा लेख पढ़ा, जिसे अहिंसा वाला जो अपन सुनते हो वो नहीं, एक दूसरा है अहिंसा वाला, दूसरा लेख किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तीर्थंकर महावीर सर्वोदय तीर्थ में है, उसी के अंत में अलग वो पढ़ा था मैंने उदयपुर सेमिनार में। मुझे इतना याद है कि जब बुक सेमिनार खत्म हो गया, मेरा व्याख्यान और खूब बहसबाजी हो गई उस पर, तो तेरापंथी है ना सीतामल लोग, इनके एक विद्वान है महावीर राज गैर्रा, नाम सुना होगा, अच्छे विद्वान है, वे यहां पे रहते थे, अपने इसमें एक डायरेक्टर थे इसकी सामने जो अपना कार्यालय है ना शिक्षा विभाग का, फिर उसमें और कई पोस्टों पर रहे, अभी है वो। उनने आके मेरे ऐसे कहा था कि ये साहब ये तो हमारे तेरापंथ की बातें हैं जो आप बोल रहे सब, ये तो सब हमारे यहां है, क्या है तुम्हारे यहां? हमारे यहां ये है कि बिल्ली चूहे को मारती है, मार सकती है, उसका भोजन है, तो उसका क्या करें, उसको क्या माने, उसे हमारे यहां देखे थे कोई बताने के, हम ऐसा कुछ नहीं जाते, जो तेरापंथियों में अब दौड़ दौड़ के जाके बचाओ इसका कोई ज्यादा महत्व तो नहीं है, अब वे कहीं पहुंच गए हो नहीं ना। लेकिन उसे उन्होंने कहा ये तो हमारी बात है, तेरापंथियों की बात है, हम तेरापंथी तो हैं ही लेकिन दिगंबर तेरापंथी है, आप समझ रहे, भाग्य की बात है कि तेरापंथ का जन्म भी आगरा में हुआ और राजस्थान में इसको पुष्ट हुआ, जब जयपुर नहीं था तब की बात बोलता हूं, सांगानेर में पुष्ट हुआ ये सबसे पहले। इसमें आता इसके बारे में तेरापंथ क्या की उत्पत्ति की कहानी, कि पहले तो आगरा नगर में पैदा हुआ बनारसी दास के माध्यम से, और उसमें ये लिखा है व्यापारी व्यापार को करन आगे जात और बने आवे अध्यात्मी लख नूतन आचार। ये किसी विरोधी विद्वान ने लिखा कि जयपुर के जोधपुर के बीकानेर के ग्वालियर के वह सब जगह के दूर दूर के व्यापारी दिल्ली के आगरा व्यापार करने के लिए जाते हैं। आगरा उस वक्त व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। आप जानते हैं माल का आवागमन सबसे ज्यादा उस जमाने में नदियों के माध्यम से होता था, क्योंकि वो बहुत सस्ता पड़ता था। जो नदी जहां को बह रही है उसी तरफ, मान लो दिल्ली से माल भेजना हो कलकत्ता, तो फटाफट नाव में रखा उनमें वहीं सीधा चला जाता था बिना उसके ही, बहता जाता पानी के साथ में। तो जो जो नदियों के किनारे नगर थे वे व्यापार के बड़े केंद्र थे। फिर तो जमुना के किनारे होने से आगरा भी व्यापार का बड़ा केंद्र था। तो वहां जाते थे और मंदिर भी जाते थे जैनी से, वहां बनारसी दास मिल जाते थे और फिर वहां उनका प्रवचन सुनते थे, उनके छंद सुनते थे, तो लोग वहां से आध्यात्मिक बन के लौटते थे। मैंने इस तेरा बंद की उत्पत्ति का सबसे मूल कारण ही बताया। जिस आदमी ने ये बात लिखी उसी ने आगे ये लिखी, विरोधी विद्वान था, उसका नाम शायद बखत राम साय था, कि फिर वहां से जे कामा में आया। ये कामा गांव है ना, इधर तीन चार गांवों के नाम लिखे मैं भूल गया हूं, कि ये उन उन गांवों में आया ऐसे व्यापारियों के माध्यम से। और उसके बाद सांगानेर में आया, जयपुर तो था ही नहीं, सांगानेर आमेर था। तो यहां पर इसकी नींव डालने का काम मालूम किन्ने किया? जोधराज गोदिका ने। नाम सुना कभी? नहीं सुना होगा बिल्कुल, जिनकी संयुक्त कौमदी किताब है, विद्वान थे जोधराज गोदिका थे और उनके बच्चे भी थे, उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूं। वो सब विद्वान थे और वो बनारसी दास का जो आया था ना, वो सांगानेर में सबसे पहले उनके पास आया और वो उसकी चर्चा वहां करते थे। उसमें लिखा है कि फिर आया वहां सांगानेर आया, तो वो एक भट्टारक थे आमेर गद्दी के, भट्टारक आमेर के नरेंद्र कीर्ति जो नाम, उनका नाम था नरेंद्र कीर्ति, और उनने चौमासा सांगानेर में किया था। आमेर और सांगानेर दो बड़े नगर थे, तो उनने वो चौमासा कहां किया था? तो वहां उनकी सभा में वो जोधराज नाम का गोदिका बहुत एड़े टेढ़े प्रश्न करता था। उनने लिखा ये ऐ आत्मा संबंधी जी है, वो ये क्रियाकांड है, इसमें कुछ नहीं है, जो भी सब बातें करता था। और उन लोगों ने बहुत रोका, लेकिन वो मानता नहीं था। थोड़े पैसे से भी संपन्न था और उसके 7-10-20 लोग भी थे, और वो रोजाना वहां तत्व चर्चा करता था, तो वो उनसे बराबर चक्कर लेता था। तो इतनी खतरनाक बात लिखी उसके बाद में कि वो नरेंद्र कीर्ति भट्टारक के भक्तों ने उनके इशारे पर उनकी वहां खूब पिटाई की और धक्का मार के निकाल दिया और उनका मंदिर में आना बंद कर दिया। समझ गए? तो फिर उन्होंने मिल करके यहां एक मंदिर बनाया नया, पैसे वाले तो थे ही वो। उस मंदिर का जो अभी 2.5 पीढ़ी का मंदिर कहलाता है, वो जोधराज गोदिका का बनाया हुआ है, और वे उसमें बैठ करके तत्व चर्चा करते थे। तो लोग ये कहते थे कि वे 13 लोग थे, इसलिए लोगों ने 13 पंथी कहने लग गए थे, कि 13 लोगों ने मिलकर 13 पंथ की स्थापना की और उनने 13 बातों का विरोध किया। अब 13 बातें गिनाई हैं। क्या लिखा? राधा अन्न भगवान को नहीं चढ़ाना। राधा समझे कि बने बनाए चावल पके पके भोजन भगवान को नहीं चढ़ाना है, रात्रि में पूजन नहीं करना, बंता में अभिषेक नहीं करना, क्षेत्रपाल पद्मावती को नहीं मानना, ये लिखी है सब बातें। मेरे शोध प्रबंध में सब लिखा, पंडित टोडामल वक्तृत्व करते तो मैं ये सब लिखा, मैंने रिसर्च की थी ना उन पर। ये 13 बातों का उनने निषेध किया, इसलिए ये 13 पंथी है। 13 लोगों ने बनाया इसलिए 13 पंथी है, और 13 बातों का निषेध किया जिनकी बातों में 13 बातों में अंतर है। तो उसका जवाब उन लोगों ने क्या दिया, उनके ग्रुप से जो बहुत कवि हो गए थे, उनके ग्रुप में है बहुत कवि जो, तो उन्होंने कहा कि हे भगवान ये बात सही नहीं है, ये इतने पंथ हैं, उन्होंने सब ऊपर से एक छंद है बहुत बढ़िया, एक गिनाया, कोई चित्तपाल को मानता, कोई पद्मावती को मानता, कोई इसको मानता, कोई देवी को मानता, कोई दिहाड़ी को मानता, ऐसे 12 पंथ हैं, और ये भगवान ये 13 पंथ तो 13 पंथ है, क्या क्या उस अंतिम पंक्ति है 13 पंथ 13 है, ये भगवान ये 13 पंथ जो है वो और दूसरों का नहीं है, 13 लोगों का नहीं है, ये 13 जो पंथ है उसका नाम 13 पंथ है। छोटम जी का तो जब जन्म भी नहीं हुआ था, भाग्य से उसी गोदी का परिवार में फिर टोडामल जी का जन्म हुआ, लेकिन वो तो सांगानेर में नहीं, ये तो वहां चाकसू में उधर उधर जन्म हुआ था इनका, और फिर वहां से इनके जयपुर के राजा ने जय सिंह ने जब नगर बसाया तो हर गांव गांव वालों को एक एक एरिया दे दिया कि तुम यहां पर अपनी बस्ती बसाओ, यहां आओ व्यापार दे दिया, तो चाकसू के चौक में सब चाकसू के लोग आ गए, उनमें टोडामल जी भी आ गए, यहां उनके बाप दादे टोडामल जी, ऐसे यहां जन्म तो वहीं हो गया था, अपने बाप दादों के साथ छोटी उम्र में इधर आ गए टोडामल जी, चाकसू के चौक में रहते थे, उनका घर था चाकसू के चौक में, ऐसे कई चौक हैं गांव गांव के, जोमनेर का चौक, चाकसू का चौक, फलानी जगह चौक, और फिर उन्होंने बाजार बसाए, तो जबेरी बाजार समझे ना, ऐसे बाजार बसाए, और फिर एक एक लाइने भी, ये मनिहारों का रास्ता, ये घी वालों का रास्ता, तो घी घी की दुकानें उस रास्ते में बस, दूसरे नहीं, इस रास्ते में मनिहार मनिहार समझते हैं, मनिहारों की दुकान, मनिहारी की, इसमें दे इसमें हरेक के, जिसको जाना हो घी लेना है तो बस घी वालों के रास्ते में चले जा, सैकड़ों दुकानें वहां मिलेंगी, और धीरे मिक्सचर हो गई, तो टोडामल जी ऐसे वे चाकसू के चौक में आ गए थे, अभी तक उनके परिवार वालों में चाकसू के चौक में घर था, जब तक मैं आया यहां तब तक, एक छगन लाल जी थे पोल्या का, आप लोग कोई जानते हो तो यहां पर शायद प्रकाश जी जानते होंगे, छगन लाल जी पोल्या का, वो कहते थे हम टोडामल जी के ढोल का क्या थे ऐसा है, ढोल का तो नहीं, ढोल का कुछ थे, बुद्ध मिले थे, बुद्धे थे बिल्कुल, हैं क्या ढोला का, ढोला का ऐसे थे, तो वो कहते थे हम टोडामल जी के वंश के हैं, फिर टोडामल जी का वंश तो बहुत गोद से चला, मतलब गोद समझे ना, हो सकता है कि उस समय टोडामल जी गोदी का नहीं हो, लेकिन बाद में उनके बच्चे गोद से आ करके चला, इसलिए वो गोदी का कहलाने लग गए, और वे गोदी का भी किसी वजह से वो ढोला का कुछ क्या कुछ करते होंगे, इसलिए वे कहते हैं हम ये कहलाने लग गए, और हम उनके वंश के हैं, ये हमको प्रवचन में आते थे मेरे बड़े मंदिर में, और वो मुझे बताते थे, वो चाकसू के चौक के मकान में रहते थे, ये टोडामल जी का मकान है। खैर अब जो बीच में बात आ गई तो मैं इसलिए कह रहा हूं, किस प्रकार से बात चल गई थी अपनी वहां है, कैसे अपन वहां पहुंच गए, हाँ मतलब देखो असेवक होकर के भी सेवक, पहले तो वो ये कह रहे कि वो सेवक ही नहीं है, अपन ये कह रहे थे कि तुम कह रहे कि वो सेवन करते हुए उसे बंद नहीं होता, कहते सेवन कर कहाँ रहा वो अब ये लेन जा रही है, जैसे कहते तुम मारो मत कि भैया मार सकते हैं कि नहीं, पहले ये तो नक्की करो, एक विरुद्ध मार ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता, किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकता, तो करो कि नहीं करो बात कहां से लाए, तो वो तो बेकार ही हुआ ना, चाहे करने का भाव हो पर में हो चाहे नहीं करने का भाव हो, जब तेरा पर में कुछ है ही नहीं तो करने का भाव भी वैसा ही निरर्थक है और नहीं करने का भाव भी वैसा ही निरर्थक है। वो गांधी कह रहे हैं कि विषय सेव ने पी विषय सेवनस्य फलम नाशनते, विषयों का सेवन करते हुए भी विषयों के सेवन का फल जो लोक में कहा जाता है वो उन्हें प्राप्त नहीं होता। क्योंकि ज्ञान वैभव, ज्ञान वैराग्य वैभव बला, ज्ञान वैभव और वैराग्यता बला, ज्ञान के वैभव से और वैराग्यता के बल से ये उन्हें प्राप्त नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि सेवते हुए ना, तो सेवक तो है ना वे, तो कहते सेवते हुए भी सेवकोपि असेवकः, तो सेवन करते हुए भी असेवक ही हैं। देखो गुरुदेव ने बहुत अच्छा लिखा, मैं थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं, पेज नंबर 159 पर देखो गुरुदेव का प्रकरण। यहां ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान लेना, व्यवहार ज्ञान अथवा शास्त्र ज्ञान नहीं लेना। ज्ञान के लिखा ना, ज्ञान के बल वैभव से, और वैराग्य का बल भी ऐसे ही लिखा होगा यहां। यहां तो उस आत्मज्ञान की बात है जो चित्त ब्रह्म स्वरूप निज परमात्मा देव के लक्ष्य से प्रकट हुआ है, और विरागता का अर्थ है अशुद्धता से शुद्धता की ओर बढ़ना। ये निर्विराधिकार है ना, ये विरागता का अर्थ है। ये दुनिया में जैसे वैराग्य को ज्ञान समझा जाता, हमने पढ़े लिख गए, शास्त्री हो गए, ये हो गए, जैन दर्शनाचार्य हो गए, ये ज्ञान नहीं लेना, और चद्रा वो लिया हमने, बाल घुटा लिए, ये वैराग्य नहीं लेना। एक जगह तो यहां तक लिखा है कि ये तो रूंधी हुई कसा है, ऐसा लिखा है। कौन सी जगह लिखा है, क्यों लिखा ना, ये तो रूंधी हुई कसा है। तो वो कहते हैं ज्ञान और वैराग्य के बल से, ज्ञान माने आत्मज्ञान आत्मानुभव, और वैराग्य माने जो अनंतानबंदी कसाय का अभाव हुआ है ना, और उससे जो चार त्रिगुण में सिद्धि हुई वो। यहां वैसा वैरागी लेना कैसा, भरत जी घर ही में वैरागी, वहां वो वैरागी नहीं है जो घर छोड़ के चला गया, क्या घर छोड़ के चला गया वो वैरागी नहीं है। अभी इन्हें तो कोई जंगल वाले तो इसे वैरागी माने ही नहीं, यदि उस क्रिया वाले को वैराग्य माने। वो कहते हैं उसके वो चौथा गुणस्थान वाला ज्ञान और वैराग्य के बल से, जो मैं आप लोगों को कहा करता हूं ना, मैं किताब लिखना चाहता हूं जो लिखी नहीं जा सकी है, और शायद न लिखी जा सके, वो सब इन्हीं के आधार पर तो है। इसी बातों को एक उदाहरण के रूप में स्पष्ट करना है, लेकिन वो खतरनाक कम काम नहीं है। एक आदमी ने ऐसा कुछ किया था, वो पूरा तो नहीं कर पाया, मैं उससे पूरा सहमत नहीं हूं। भरतेश वैभव का नाम सुना, एक कवि हुआ दक्षिण भारत में, क्या नाम था, रत्नाकर। उसने भरतेश वैभव लिखा तो दिगंबर जैन समाज ने उसे समाज से निकाल के बाहर कर दिया, और फिर वो लिंगायतों में चला गया, वो मरा ही लिंगायतों में है, शिवलिंग के सामने हुआ मंदिर में, क्यों लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, आज तो पढ़ते हैं उसे लोग। मैं उसे बहुत बड़ा क्रांतिकारी समझता, क्रांतिकारी तो था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा उसके प्रति नहीं है। क्यों नहीं है, कि मैंने भरतेश वैभव आदि से अंत तक पढ़ा है, जो 1000 पेज का है। हिंदुस्तान में तो मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला, लेकिन अमेरिका में मेरे हाथ लग गया, 7 दिन तक मैं प्रकाश छाबड़ा के यहां ठहरा था अमेरिका में, तो उसके यहां था वो, तो मैंने वो 7 दिन में 1000 पेज पढ़ लिए पूरा। मैं जहां जिसके घर ठहरता हूं उसकी लाइब्रेरी छानता हूं, जो कोई नई किताब मिलती है उसे, मैंने जी मूक माटी भी वहीं पढ़ी थी। क्या तो मेरी श्रद्धा घट गई। एक एक अध्याय तो ऐसा है इसमें कि जिसका अर्थ ही जिसने अनुवाद किया था उसने लिखा नहीं, और अनुवादक मालूम कौन थे, नाम सुना, वर्धमान पासना शास्त्री, वो हमारे गुरु भाई थे, हमारे विद्यालय के पढ़े हुए थे, हमसे तो बहुत बड़े थे, हमसे कम से कम 25 वर्ष बड़े होंगे, और वो लाल बहादुर शास्त्री थे ना, उनके सहपाठी थे, ये विमल सागर महाराज के क्लास फेलो थे, आचार्य विमल सागर महाराज के, ये लोगों के साथ पढ़ते थे। उनने कहा ये इतना श्रृंगार रस का वर्णन इसमें है कि मेरी हिम्मत नहीं है। ऐसा नहीं कहा, अर्थ नहीं जानते थे, बहुत अच्छे विद्वान थे संस्कृत के, लेकिन उन्होंने वो छोड़ ही दिया। लेकिन जो जो नहीं छोड़ा वो भी इतना अश्लील था कि मेरे दिमाग में से वो निकल गया कहीं। और लगा के साथ समाज ने साथ इसकी वजह से भी एक्शन लिया होगा। लेकिन उन्होंने बहुत ऐसी बातें नए पॉइंट लिखे हैं, इसलिए ये मैं समझना कि मैं कोई लिखता के लिखूंगा कि लिखने जो विकल्प है वो भरतेश वैभव जैसा नहीं। क्या समझ में आया ना? क्योंकि तुम भविष्य में तुम पढ़ोगे ही मानोगे तो हो नहीं, जब मैं इतनी बात कह दी मैंने तो वैभव को भी देखो विरागता बलाद है ना। देखो ये लिखे हैं जयतन जी छाबड़ा का पढ़ते हैं, ज्ञान और विरागता की ऐसी कोई अचिंत सामर्थ है कि ज्ञानी इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ भी उनका सेवन करने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विषय सेवन का फल तो रंजित परिणाम है और उसे ज्ञानी नहीं भोगता प्राप्त, रंजित परिणाम को नहीं भोगता। अब ये रंजित परिणाम भी सिद्धा के लेवल का है। देखो इसमें समझो जरा, कोई भी विषय का सेवन उसमें उपयोग की एकाग्रता के बिना संभव नहीं, एक बात। और हर इंद्री में जैसे कि खाना खाते हैं आप तो खाना खाने के पहले मुंह में लार आती है, तब जाकर के आप खाना ढंग से वो गीला होता गले में गुटक सकते हो तब पचता है वो। यदि वो लार नहीं हो और वैसे ही आपको डाल दें वही खाना तो नहीं पचेगा। अब ऐसे ही हर विषय का है, माने वो लार बिना भाव माने खाने की इच्छा हुए बिना तीव्र है ना, वो कैसे आती है मालूम? वो तुम्हारे गौण आहार दंशनी ने जो भोजन देखते हो तो उसके पहले आपका मुंह इस बात के लिए तैयार होता है क्या कि वो लार आकर के इसके लिए तैयार हो जाए? हमेशा ऐसा तैयार नहीं रहता 24 घंटा, आप समझते हो। जैसे हर इंद्री के विषय का है, ज्ञान का चक्षु का कर्ण का माने उपयोग के इन्वॉल्व हुए बिना पांच इंद्रियों के विषय का सेवन संभव नहीं है। अब यहां वो ऐसा उपयोग इन्वॉल्व है और राग परिणाम भी है, दोनों बात कह रहा हूं मैं, समझना। ज्ञान भी इन्वॉल्व है और तत्संबंधी राग भी है, तो फिर क्या बचा जो ये कह रहे कि वो असेवक है? टोडा मजी ने लिखा बहुत क्लियर शब्दों में, ज्ञान राग तो मेरो मिलो, घूमर साहब लिखने में मैंने कहा तो सुन में भी, और करनो धरनो तन को भिलो, और कागज मसी अक्षर आकार लिखिया अर्थ पर, ज्ञान और राग तो मेरा मिला या नहीं मिला? तो हर विषय के सेवन में चाहे शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो हमारा ज्ञान और राग मिलता ही मिलता है। भगवान की पूजा में भी ज्ञान और राग दोनों मिलते हैं और भोजन करने में भी ज्ञान और राग दोनों मिलते हैं, मेरा ख्याल नहीं ना। अब क्या रह गया जो वो असेवक है? तो वो जो श्रद्धा के लेवल पर अनंतानुबंधी राग नहीं है और श्रद्धा के लेवल पर उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, वो बचा। अब हम मुझ श्रद्धा के लेवल का जो है उसको पहचानते ही नहीं, दिक्कत तो ये है, हम तो ये चारित्र वाले ही को जानते हैं। एक बात और कहता हूं बहुत मार्मिक है, पहले भी कही है लेकिन आपको कितनी ध्यान है कि नहीं, क्यों जी हमारा वो अनंतानंदी के साथ चली गई तो कुछ ना कुछ तो चारित्र हमारे जीवन में दिखना चाहिए। और चरित्र मुझे बोले लेस न संयम, ये कहते असंयम गुणस्थान है, नहीं कहा नहीं कहा, तो ऐसा देखना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कुछ न कुछ नहीं हो। तो वो कह रहे हैं कि वो तो ऐसी कसाय गई है कि जिसका कार्य तो तेरे जीवन में दिखाई देता ही नहीं था, ये जो अभी भी चले जाने के बाद भी दिखाई दे रहा है ये तो अनंतानंदी कसाय का अमिथ्यात्व का कार्य था ही नहीं। शांति जी क्या क्या समझ में, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। होता तो इसके साथ ही चला जाता। ये तो अपने भी अप्रत्यक्ष है ना, वर्ण करसाई के उदय का कार्य है, समझे ना। ज्ञानी के परिस्थिति का मान वृत्ति जो है ना, अनुवृत्त होते हैं जिनके उनकी बात कर रहा हूं, जो परिस्थिति का मनोवचन का कृतकार अनुबोधना नौ बार से त्याग है, वो भी जो बाकी विषय वहां है वो प्रत्यक्ष है ना वर्ण का कार्य है, अप्रत्यक्ष है ना वर्ण का नहीं है। जो दिख रहा है राग अनुवृत्ति के वो प्रत्यक्ष है ना वर्ण का दिख रहा है, और जो अवृत्ति के दिख रहा है वो अप्रत्यक्ष है ना वर्ण का दिख रहा है, अनंतान बंदी का तो दिख ही नहीं रहा। इसमें जी लड़ना तक आ जाता है, युद्ध में मारना तक आ जाता है, जो पांडवों ने लड़ी, राम ने लड़ी लड़ाई, और जो तीर्थंकरों ने भी लड़ी, ये सब राग जो है अनंतान बंदी का नहीं है काम। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, क्योंकि अनंतान बंदी का होता तो जिनकी अनंतान बंदी चली गई उनके नहीं देखा जाता, तो उनके नहीं, तो हमारा भी वो उसका नहीं है। क्या हुक्म दें जी, समझ में आएगा नहीं आई? ऐसा नहीं हमारे तो अनंतान बंदी से, ऐसा नहीं है। ये जो दिख रहा है जो प्रवृत्ति अनंतान बंदी के साय के योग में, मिथ्यात्व के योग में जो पाप होते हैं उसमें के करते हुए तो तुम्हें जेल में रहना पड़ता बेटा, तुम यहां रह ही नहीं सकते थे। जो समाज को मान्य है उसमें तुम रह सकते हो ना, वो तो अप्रत्याखाना वर्ण प्रत्याखाना वर्ण का विकार है, समझ गया। समाज में तुम बैठने लायक बने हो, ये अप्रत्याखाना वर्ण प्रत्याखाना वर्ण का विकार है भाई साहब। इसलिए आप ज्ञान ही कैसे मानते, तुम्हें दिखेगा कैसे, क्योंकि वो जो है वो तो तुम्हारा दिखता ही नहीं, तुम्हारी परिणति में है ही नहीं। होगा तो जरूर जिनके अनंतानबंदी के सहाय है, लेकिन वो श्रद्धा के लेवल पे ही रहता है, वो भी क्रिया के लेवल पे नहीं आ सकता। उसके लिए कैसी शक्ति चाहिए, साथ में नरक जाने लायक पाप करने के लिए शक्ति चाहिए, जो ये पंचम काल के जीवों में नहीं है। यदि होती तो साथ में नरक में जाते पंचम काल में, है? कौन से नरक ले जाते हैं अभी करना नहीं हो वाले बताएंगे, है? पहले तक तीसरे छठवें तक पांचवें काल में फिर पूछ लेना इधर करना नियोग वालों से, वो तो साथ में तो जो है छठवें की बात नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत बहुत नीचे होगा, तीसरा होगा बहुत से बहुत, हैं क्या। तो जो भी हो आप समझिए ना, तो बाकी नहीं जाते ना, वहां जाने लायक पाप तो करने की ताकत ही किसी में नहीं है, पाप का प्रकर्ष भी हमें नहीं हो सकता। और जैसे हमें एक स्वर्ग के ऊपर नहीं जाते हैं तो पुण्य का प्रकर्ष भी नहीं हो सकता, धर्म का प्रकर्ष भी नहीं हो सकता। इतने हमारी पुरुषार्थहीनता है, और एक ही पुरुषार्थ कर सकते हैं, आपको करना हो तो निगोद जाने का कर सकते हैं, वो भी वास्तव में तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता, उसकी वो काललब्धि आती है, कितने काल को तुम निकले हो वो काल पूरा हो जाता है, तो फिर ऑटोमेटिक है ना। और देव के तीसरे देव एक केंद्री हुआ आजाद हो जाता है ना वो। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम में यदि पाप नहीं दिखता है तो पाप नहीं है अंदर में, इसलिए नहीं दिखता है बात नहीं है, उस पाप को प्रकट करने की ताकत नहीं है। जितना गुस्सा तुम्हारे अंदर है उतना गुस्सा को बर्दाश्त करने की ताकत इस शरीर में नहीं है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। यदि तुम आधा घंटे तक भड़बड़ाते रहे ना गुस्सा में, ठंडा नहीं पड़ा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मर जाओगे तुम। नहीं है तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत कि जो गुस्से को ही बर्दाश्त कर ले, समझे ना। उस जाति का क्रोध है ना, उस जाति का मान है, तो तुम क्या बात कर रहे हैं। वो अनंतानबंदी की बात है, यहां तो कहते वो श्रद्धा के लेवल पर जो सुधार हुआ इसलिए उसे हम असेवक कह रहे हैं, और उसने वो बंध को रोका है। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में बाहर जो अंतर नहीं दिखाई देता है उसका कारण ये है। ये इस बात पर बहुत गंभीरता से चिंतन मनन जरूरी है, अन्यथा हमें चौथे गुणस्थान की भूमिका ही समझ में नहीं आएगी। क्या अभी भी कोई आदमी अपने को सम्यक दृष्टि कहे और हम उसकी पहचान का चिन्ह खोजें, तो वो पहचान के चिन्हों को खोजकर आप लिखो ये कागज पर, तो मैं कहता हूं 99.9% वो सब ऐसे ही होंगे जो उसका चिन्ह ही नहीं है। मैं आगम से आपको सिद्ध करके बताऊंगा। तो अभी तो तुम्हें उसकी पहचान का चिन्ह की खबर नहीं है, समझ रहे ना। वो कहते पहचान नहीं, केवल ज्ञानी तो साक्षात जानेगा, हम अनुमान से जानेंगे ना, आगम से तो जान नहीं सकते, क्योंकि आगम से ऐसा नहीं कहता कि ये मिथ्या दृष्टि है। और जिनके बारे में कहा है वे हमारे सामने हैं कहां, वो आगम को ये नत्थु खेरे की बात थोड़ी करता है। ये बड़े बड़े नाम होते हैं ना, जैसे तीसरा सलाह के महापुरुष, उनकी बात करता है। अब तीसरा सलाह के महापुरुषों में तो यहां कोई है नहीं क्या? अब हम कहां से जानेंगे? अनुमान से जानेंगे ना। तो अनुमान के लिए उसका सही परिभाषा तो हमें पता होनी चाहिए। अव्याप्ति अव्याप्ति से रहे दोष हम कैसे देखेंगे? कि जो ऐसी जो बातें को तुम मिथ्यात्व का लक्षण मान रहे हो, देश सैकड़ों सम्य दृष्टियों में आगम में लिखी देखी जा रही है, और जिसे नहीं मान रहे हो, समझ गए ना, वो मौजूद है बिल्कुल एकदम, जिन्हें तुम बहुत शांत मान के बैठ गए हो, उनमें देखी जा रही है। तो तुम पहचान कैसे कर ले? पहले तुम बताओ पहचान का चिन्ह तो बताओ, तुम वो तराजू तो बताओ जिस पर तुम तोलोगे किसी को। अपने को सम्मान दृष्टि घोषित करने वालों को इतना भी पता है कि नहीं है कि सम्मान दृष्टि का कि पहचान का चिन्ह क्या है, जिस आधार पर हम उनको करेंगे, जिन आधार जो हम बोलकर जिनको हमने ज्ञानी घोषित कर दिया जिन कारणों से, और जिन कारणों से हमने अज्ञानी घोषित कर दिया, वे कारण कितने सही हैं। देखो एक मार्मिक बात कहता हूं, जरा समझने के लिए है, क्योंकि अपन तो अज्ञानी लोग हैं, तो अज्ञानी लोग तो पहचान नहीं सकते, लेकिन अपने इस सब लोगों के द्वारा मान्य गुरुदेव सिंह तो ज्ञानी थे ना, जो भी हमारे गुरुदेव सिंह के अनुयायी हैं, कम से कम एक व्यक्ति तो निर्विवाद है, और भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं बाकी के में विवाद है, लेकिन जिसमें निर्विवाद रूप से निर्विवाद है, क्या तो उनने भी अपने सामने रहते हुए ज्ञानी थे, उनको नहीं पहचान पाया, ऐसे कई केस हैं क्या नहीं है? और ऐसे भी हैं कि जिन्हें पहले उन्हें ज्ञानी घोषित कर दिया और साल दो साल बाद ज्ञानी घोषित कर दिया, दो ही तरह के केस हैं, आया समझे ना। इसका मतलब यह है कि जिन्हें हम सब पूरी तरह से ज्ञानी मानते हैं, वो भी अनुमान ही कर सकते हैं, और वो अनुमान भी गलत भी नहीं कर सकता है, खुद ही मान लिया ना। ये तथ्य समझने की बहुत जरूरत है। और इसी आधार पर जो अपना वो कलश है आता है ना, कि भाई एक एक क्षण में तो बदलता है, जिन्हें सुबह से शाम तक छह दफे तो बदल गए तुम, अब तुम्हारे कौन से चिन्ह से पहचाने, और पहचान भी लिया तो तुम उसी वक्त ही सम्य दृष्टि से सिद्ध होगा ना, वो आधे घंटे बाद तो सिद्ध नहीं हो रहा। तो हम तो किसी को जब घोषित करते तो परमानेंट ही करते हैं क्यों, किसी को हम कलेक्टर बनाते तो एक दिन कैसे नहीं बनाते, वो तो बनता कलेक्टर तो जब तक रहे तब तक है, समझ गए। तो मतलब इसमें क्या दम रह गया, तुम अपने आत्मा को जानो ना, उससे बन जाओ ना स्वयं, और दूसरे के जानने से कोई लाभ नहीं है। फिर हम क्या करें, गुरु किसे बनाए, कह रहे भैया जिनवाणी है ना, तो जिनवाणी के अनुसार जो है जिनकी वाणी वो गुरु है, आता ना, जो अपन ने लिखा है कहां लिखा बोलो, उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है और उन गुरुवर्यों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है, क्या आप समझे ना, एक है। और जिनवाणी माने क्या, तो वीतरागी सर्वज्ञ की वाणी जिनवाणी है, तो हम कैसे जाने के जो जिनवाणी है, कि वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, वह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती। इतना क्लियर थिंकिंग तो मेरा 21 इयर्स की उम्र में था, ये तब की लिखी है जी, जब मैं कितने का था 21 बरस का, सन 56 में लिखी थी जी मैंने, 56 समझते हैं 56 में, और मेरे 33 का जन्म है तो 21 बरस का हुआ ना पक्का है? क्या? ये भी आपको जान के रास्ते जी होगा कि गुरुदेव इधर थोड़े सोनागर में मिले थे एक आध दिन को, दूर बैठ के सुना था, और उसके पहले सुना भी नहीं था, तब लिख ली थी, फिर चांदखेड़ी में जब द्वारा मिले तब तो उन्हें मैंने भेंट कर दी थी। ये 57 में जो चांदखेड़ी में गए ना, वो कोटा भी आए थे वहां से यात्रा, सकेत जी की यात्रा के समय के बाद लौटते हुए आए थे, ऐसा किसका था, तो उस वक्त मैंने उन्हें ये भेंट कर दी थी। तो अपने पास ये है ना, कितना साधन मुद्दे की चीज है ना, इन तीन चीजों से पहचानो ना, बस खत्म। जो वीतरागता की पोषक हो वो जनवाणी है, और उस वाणी के अंतरतम को जो जानते हो बस वे गुरु हैं। तो तुम काय के लिए गुरु चाहिए? आहार देने के लिए कि समझने के लिए चाहने हुए तो वो समझने वाले गुरु इससे पता चल जाएगा। समझना हो तो समझ गए ना, समझना हो ना तो उस वाणी के अंतरतम को जानने वाले से काम चलेगा ना अपना। तो वेदी नग्न दिगंबर दशा में हो, छठवें सातवें गुणस्थान में हो, तो उस तो फिर कहना ही क्या है, इससे महाभाग्य तो हमारा कोई दूसरा है ही नहीं है। लेकिन नहीं हो, कम हो, नहीं मिल पाए तुम्हें, तो ये मत समझना कि हमारा मनुष्य मुफ्त में चला जाएगा। इस लोक में उस वाणी के मर्म को जानने वाले कोई भी हो, टोडरमल जी जैसे लोग, समझे ना, गुरुदेव श्री जैसे लोग, तो उनसे हमें अपना काम चला लेकर अपना कल्याण में नमाज में लगना चाहिए।